अर्चन सूरते और है सूरत तगाबुन 64 नंबर सूरा 18 आयात है। मुशरिकीन का जुर्म और इनके अजाब का जिक्र है और ईमान वालों के अजर का जिक्र है। असल हार जीत आखरत की है, दुनिया की नहीं। ये कयामत का नाम है यौमुत तगाबुन। और आपको पता है तगाबुन क्या है? गबन। उर्दू में सुना होगा गबन का केस। कयामत के दिन कुछ लोग निकियां ढूंढ रहे होंगे, कह देगा तुम्हारी नेकियां तुम्हारे बच्चे खा गए, तुम्हारी नेकियां तुम्हारी बीवियां खा गई। ये हार जीत का दिन होगा। शौर के साथ जीना है हमने, सखावत का मुजाहरा करो। फिर इसमें मुशरिकीन मक्का के खिलाफ फर्दे जुर्म भी है। और इसी तरह से आगे हम सूरत तलाक पढ़ेंगे जिसको निसाए सुगरा कहते हैं। इस सूरत में कुछ ऐसे मामलात हैं जो आपको तलाक से बचा सकते हैं। आयली मामलात की भी अहमियत है और इसका नजूल भी 2 हिजरी में। आइए देखते हैं सूरत तगाबुन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यूसुफ बिहुलिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। आयत 1 से 10। अल्लाह ताला अहसनुल खालिकीन है। तमाम चीज़ें जो आसमान और ज़मीन में हैं वो अल्लाह की पाकी बयान करती हैं। इसी की सल्तनत है और इसी की तारीफ है और वो हर हर चीज़ पर कादिर है। इसी ने तुम्हें पैदा किया, बस तुम में से बास तो काफिर हैं और बस ईमानदार हैं। और जो कुछ तुम कर रहे हो अल्लाह ताला उससे खूब देख रहा है। इसी ने आसमानों को और जमीन को अदल और हिकमत से पैदा किया है। इसी ने तुम्हारी सूरतें बनाई और बहुत अच्छी बनाई। और इसी की तरफ लौटना। आपको अपनी सूरत कैसी लगती है? कभी अपनी सूरत की बुराई ना करें। आज एक ऑब्सेशन हो गया शक्लों का, मैं तो अच्छी नहीं हूं ना। तौबा कीजिए, पता नहीं अल्लाह इस सजा में क्या ना कर दे आपके साथ। ना अपनी बच्चियों की शक्लों को डिस्कस करें, ना दूसरों की शक्ल। मुझे तो खूबसूरत बच्चा चाहिए। खूबसूरत और बदतमीज और बद अखलाक हो तो चलेगा? नहीं, ज्यादा दिन नहीं चलती वो चीज़। वो आसमानों जमीन की हर हर चीज का इल्म रखता है और जो कुछ तुम छुपाओ और जाहिर करो वो सबको जानता है। अल्लाह तो सीनों की बातों तक को जानने वाला है। क्या तुम्हारे पास इससे पहले के कुफार की खबर नहीं पहुंची, जिन्होंने अपने आमाल का वबाल चख लिया और जिनके लिए दर्दनाक अजाब है? ये इसलिए कि इनके पास इनके रसूल वाज़ह दलाइल लेकर आए तो उन्होंने कह दिया कि क्या इंसान हमारी रहनुमाई करेगा, बस इनकार कर दिया और मुंह फेर लिया। और अल्लाह ने भी बेनियाजी की। दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे ऊपर रहम कर दे। ये जो है ना, इस पे मैं अक्सर कहती हूँ, तुम रूठे हम झूठे। आप मुंह बाद में फेरेंगे, अल्लाह मुंह आपसे पहले फेर लेगा, क्योंकि आपको मुझे अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है। इन कुफार ने ख्याल किया कि दोबारा जिंदा ना किए जाएंगे। आप कह दीजिए क्यों नहीं, अल्लाह की कसम तुम जरूर दोबारा उठाए जाओगे, जो तुमने किया इसकी खबर दिए जाओगे। और ये अल्लाह पर बहुत आसान है, बस तुम अल्लाह पर और उसके रसूल पर और इस नूर पर जिसे हमने नाजिल फरमाया है ईमान लाओ और अल्लाह ताला तुम्हारे हर अमल पर बाखबर है। अब जरा सुनिएगा, यहाँ से वो दिन है जिसका जिक्र है नाम में सूरत के, जिस दिन तुम सबको इस जमा होने वाले दिन जमा करेगा। सब्र में लाइए खुद को और अपनी फैमिलीज को। वो यही दिन है हार जीत का, कौन जीतेगा कौन हारेगा नहीं पता। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान ला कर नेक अमल करे अल्लाह इससे इसकी बुराइयां दूर करेगा और इसे जन्नतों में दाखिल करेगा, जिसके नीचे नहरें बह रही हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे। यही बहुत बड़ी कामयाबी है। और इसके बरक्स, और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयतों को झुठलाया वही सब जहन्नमी हैं, जो जहन्नम में हमेशा रहेंगे। वो बहुत बुरा ठिकाना है। अल्लाह उस जहन्नम में जाने से बचा ले सबको। 3 आयात ईमान से मुतल्लिक। तगाबुन 2, इंसान खुद अपने लिए शर या खैर का रास्ता चुनता है। अल्लाह ने चॉइस दी है, चूज हम करते हैं। तगाबुन 8, कुरान के नूर से गफलत के अंधेरे छट जाते हैं। आयत 9, हर जीत का असल मुकाम दुनिया नहीं आखरत है। और क्यामत के दिन इस हकीकत का पता चल जाएगा कि असल में कौन पास कौन फेल। फेथ इन एक्शन। अल्लाह हमारे दिलों के भेद से वाकिफ है, इसलिए नियतों को भी दुरुस्त करना है। ये जुमला लिखिए, खुद को नेक कहलवाने से ज्यादा खुद नेक बनने की फिक्र करनी है। सिर्फ नेकियां ही नहीं करनी, गुनाहों को भी छोड़ना। और इंसानों की आदत पता क्या है, 10 नेकियां कर लेंगे, आसान है, ये पढ़ लो ये सवाब, ये पढ़ लो ये सवाब, ये फजाइल ये अमाल, लेकिन एक गुना नहीं छोड़ते। कोई आपको नेकियां करने की दावत दे ना, तो आप उसकी तारीफ करते हैं, बड़ी अच्छी बाजी है, बड़े पढ़ने को वजीफे देती हैं, पर वो आपकी एक बुराई छोड़ने की बात करें तो आपको वो बुरे लगते हैं। अल्लाह हमें माफ़ करे और गुनाहों से रोक ले और बचा ले। आगे जी रुकू नंबर 2, 11 to 18। अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत ही में निजात है। मा साब मिन मुसीबत इल्ला बिइज़्निल्लाह। यहाँ कुछ बातें तकदीर से मुतल्लिक भी आ रही हैं, जरा से इसको देखिएगा। कोई मुसीबत अल्लाह की इजाज़त के बगैर नहीं पहुंच सकती जो अल्लाह पर ईमान लाए, अल्लाह इसके दिल को हिदायत देता है। इस आयत का नंबर नोट करें, आपके रात के सेशंस में काम आएगा। वमें युमिन बिल्लाही यहदी कल्बा। इसी को मोमिन की फरासत कहा गया और इसको मारफत इलाही कहा गया। और अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। लोगों अल्लाह का कहना मानो और रसूल का कहना मानो। एक बड़ी मोहब्बत भरी दरख्वास्त है, बस अगर तुम एराज करो तो हमारे रसूल के जिम्मे सिर्फ साफ साफ पहुंचा देना है, अल्लाह के सिवा कोई माबूद बरहक नहीं, और मोमिनों को अल्लाह ही पर तवक्कुल रखना चाहिए। अल्लाह हमें तवक्कुल करने वालों में शामिल करे, तवाक्कुल करने वालों पे नहीं, यानी अल्लाह के साथ औरों पे भी करें। और आपके नाम एक पुकार, या अय्युल्लज़ीना आमनू इन्न मिन अज़्वाजिकुम व औलादिकुम अदुव्वुल लकुम। जरा से इस बड़े बड़े लफ्ज़ों को नोट कीजिएगा, इतनी आयत होती ना तो हमने कहना था देखो कुरान खुद कह रहा है कि तुम्हारे शौहर और तुम्हारी औलादें तुम्हारी दुश्मन है। मैं भी तो यही कहती हूँ ना। लोग आधी आयत पढ़कर ये समझते हैं, लेकिन जरा आयत को पूरा तो देखिए। अब फ़ख़्ज़रूहुम नंबर 1, वइन ताफू नंबर 2, व तस्फहू नंबर 3, व तग़फिरू नंबर 4। डिक्शनरी में मुआफ़ी के लिए चार लफ्ज़ आते हैं, चारों कट्ठे आ गए। फ़इन्नल्लाह गफूर रहीम। अब सुनिए इसका तर्जुमा। और खुदा के लिए अपने शौहरों और बच्चों को अपना दुश्मन समझना या अपना दुश्मन बनाना छोड़ दें। तालीम तरबियत तज़किया अच्छे अखलाक के साथ पेश कीजिए। ये सारी ऑप्शंस पैकेज बनाकर दिखाएं, इंशाल्लाह आपसे ज्यादा आगे भागेंगे अगर आपको इस वक्त लग रहा है कि वो बहुत पीछे हैं। चलिए अपने ऊपर लेकर सुनते हैं। ऐ ईमान वालियो कह दूं, क्योंकि हम तो वालियां ही हैं, क्योंकि अब इसमें सीगे तकलीब में है ये मानी, मैं कर भी दूंगी तो गलत नहीं है, सारी जगह तो मुजक्कर है ना कुरान में, तो इसमें मुअन्नस भी शामिल है, ये अरबी का एक कसूल है, बस इतना ही समझ लें इस वक्त। ऐ ईमान वालो, तुम्हारी बास बीवियां और बास बच्चे, ये बाज हैं सारे नहीं, कौन से जो तुम्हें नेकियों से रोके और गुनाहों पे मजबूर करें, तुम्हारे दुश्मन हैं, बस इनसे होशियार रहना, और अगर तुम माफ कर दो और दरगुजर करो और बख्श दो तो अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। तुम्हारे माल और औलाद तो सरासर तुम्हारी आजमाइश है, और बहुत बड़ा अजर अल्लाह के पास है। ये है घर और कुरान साथ साथ, ना घर तोड़ना है ना कुरान छोड़ना है, ये एक स्लोगन बना ले, ना अल्लाह से कटना है ना रिश्तों से कटना है, पर जहां तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो और सुनते और मानते चले जाओ। ये नोट करें, आप ना पीछे हो, फत्तकुल्लाह मस्तता तुम, आप आगे बढ़ेंगे वो आपके पीछे आएंगे। देखिए ना जन्नत के करीब हो रही है ना आप, तो बच्चे जरा दूर हैं और आपसे भी करीब है, तो आप एक स्टेप आगे होंगे तो थोड़ा सा एक स्टेप उनको भी तो आगे आना पड़ेगा ना। किसी डोरी में बंधे बच्चे को देखें, 2 साल पहले के दौरे कुरान में इन आयतों पे एक फ्लो चार्ट शेयर हुआ था, अमेजिंग था। ये पारा नोट कर लें, कभी इन आयतों के करीब जाकर ढूंढें, एक माँ इधर है तो बच्चा पीछे है, तो माँ आगे गई तो बच्चा भी गया, माँ आगे जाती है बच्चा खुद ही आता जाएगा, शौहर भी बेचारे आते ही हैं पीछे, सुनाया नहीं तो उसने जुमा बाजार में आपके पीछे पीछे बैग लेके नहीं फिरते, आप जोड़े खरीद रही होती हैं वो गरीब बार बार धमकियों के बाद मैं और आगे नहीं जाऊंगा फिर जाते हैं ना, तो आपको जन्नत नजर आ गई है, वो नहीं जाएंगे छोड़ के, बड़ी महंगी है दूसरी शादी, जब आपसे शादी हुई थी तो इतनी महंगाई नहीं थी, वो एक बुजुर्ग थे ना तो वो कहते थे बड़ी कीमती है तुम्हारी मामी, अब नई शादी इतने लाखों की होती है तो मैं इसकी हिफाजत करता हूँ, हर महीने दवाइयां खा खा के वैसे महंगी होती जा रही है। तो ये प्यार के लाड के रिश्ते होते हैं, बस इसको लाड से ही रहने दें, अग्रेसिव ना हुआ करें, कभी वो गुस्सा कर लें कभी आप कर लें, दोनों इकट्ठे गुस्सा ना करें वरना अगली सूरत में पता चलेगा क्या होता है। चलिए अब दोबारा इसी शोर से सुनिए। बस जहां तक तुमसे हो सके अल्लाह से डरते रहो और सुनते और मानते चले जाओ, और अल्लाह की राह में खैरात करते रहो जो तुम्हारे लिए बेहतर है। और जो शख्स अपने नफ्स की हिर्स से महफूज रखा जाए वही कामयाब। ये है अंदर का चोर। अगर तुम अल्लाह को अच्छा कर्ज दोगे यानी इसकी राह में खर्च करोगे तो इसे वो इसे तुम्हारे लिए बढ़ाता जाएगा और तुम्हारे गुनाह भी मुआफ फरमा देगा। अल्लाह ताला बड़ा कदरदान है और बड़ा बुर्दबार है। वो पोशीदा और जाहिर का जानने वाला है और जबरदस्त हिकमत वाला है। 3 आयात ईमान से मुतल्लिक, तगाबुन 11 मुश्किलात में दिल का जमना ईमान की निशानी है, 13 तगाबुन अधूरी इताअत से मुकम्मल दीन नहीं मिलता, आधे नोट से तो ब्रेड नहीं मिलती जन्नत कहाँ से मिलेगी, तगाबुन 14 अहलो याल की मोहब्बत को अल्लाह की मोहब्बत के ताबे करना है इंशाल्लाह, फेथ इन एक्शन मुश्किल में सब्र और सिर्फ अल्लाह से मदद मांगनी है, अपने घर वालों को खुश करते हुए अल्लाह को नाराज नहीं करना, अल्लाह के काम खलूस नीयत और इखलास से करने हैं ताकि अल्लाह इसका अजर भी ज्यादा दे और हमारे गुनाह भी माफ फरमा दे। तो क्या मैसेज मिला? एक बड़ा क्लियर कट मैसेज मिल गया ना, घर और कुरान साथ साथ, और घर नहीं तोड़ने, ना कुरान छोड़ना ना घर तोड़ना। और इसके लिए फिर इलास्टिसिटी चाहिए, जो रस्सी अकड़ी होती है ना वो नहीं आगे आती। जितनी लचक और जितनी सहूलत और नरमी आपके अंदर होगी इसमें दोनों ही चीजें निभ जाएंगी इंशाल्लाह। अब आगे है सूरत तलाक, 65 नंबर सूरा, 12 आयात है। इसको सूरत निसाए सुगरा भी कहते हैं। तलाक की कुछ बातें हमने पीछे पढ़ी सूरह बकरा में, कुछ सूरत निसा में, और अब यहाँ आ रहा है। और खास तौर पर तलाक की सूरत में जो इंतजार की मुद्दत है उनका तذकरा है सूरत में, और इस सूरत में तकवा और तवक्कुल के फवायद हैं। आइए देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रुकू नंबर 1, 1 to 7, तलाक और इद्दत के अहकामात। अब ये कुरान क्या कह रहा है? ये बातें क्यों आती हैं भाई? सवाब के लिए पढ़ना है तो इसकी जरूरत थी? ये कितनी बड़ी दलील है कि कुरान समझ के पढ़ो, सिर्फ खाली 3-3 4-4 पारे रोज पढ़ के खुश ना हो, इसको समझने की भी कोशिश करो। या युहन नबी युजा तल्लक्तुमुन्निसा फतल्लिकुहुन्न लिइद्दतिहिन, ए नबी अपनी उम्मत से कहो कि जब तुम अपनी बीवियों को तलाक देना चाहो तो इनकी इद्दत के दिनों के आगाज में इन्हें तलाक दो और इद्दत का हिसाब रखो और अल्लाह से जो तुम्हारा परवरदिगार है डरते रहो, और ना तुम इन्हें इनके घरों से निकालो और ना वो खुद निकले। हाँ ये और बात है कि वो खुली बुराई कर बैठे हैं, ये अल्लाह की मुकर्रर करदा हदें हैं। जो शख्स अल्लाह की हदों से आगे बढ़ जाए उसने यकीनन अपने ऊपर जुल्म किया, तुम नहीं जानते, शायद इसके बाद अल्लाह ताला कोई नई बात पैदा कर दे। पूरा तलाक देने का तरीका और उसकी हिकमत है इस एक आयत में। मेरा फेवरेट टॉपिक है, मैं छेड़ दूंगी तो बात लंबी हो जाएगी। हमारा हाल तो है कि हमें तो तलाक भी नहीं देनी आती, शादी करनी तो क्या आएगी। अब सुनिए इद्दत के दौरान क्या है। बस जब ये औरतें अपनी इद्दत करीब पहुंच जाएं तो इन्हें या तो कायदे के मुताबिक अपने निकाह में रहने दो या दस्तूर के मुताबिक इन्हें अलग कर दो, और आपस में से दो आदिल शख्सों को गवाह कर लो और अल्लाह की रजामंदी के लिए ठीक ठीक गवाही दो। यही है वो जिसकी नसीहत उसे की जाती है जो अल्लाह तआला पर और क्यामत के दिन पर ईमान रखता हो और जो शख्स अल्लाह से डरता है। या गिनना शुरू कर दीजिए, तकवा के फवायद आ रहे हैं। जो शख्स अल्लाह से डरता है अल्लाह उसके लिए छुटकारे की शक्ल निकाल देता है और इसे ऐसी जगह से रोजी देता है, नंबर 2, जहां से उसको गुमान ना हो। और जो शख्स अल्लाह पर तवक्कुल करे अल्लाह उसको काफी होगा। तुम्हारी औरतों में से जो औरतें हैज से नाउमीद हो गई हो यानी मीनोपॉज शुरू हो गया, और अगर तुम्हें शुबा हो तो इनकी इद्दत 3 महीने है, और इनकी भी जिन्हें है रूही ना हुआ हो, और हामिला औरतों की इद्दत वज़ह हमल है यानी डिलीवरी, और ये अल्लाह का हुक्म है जो इसने तुम्हारी तरफ उतारा है। और जो शख्स अल्लाह से डरेगा, एक और फायदा आ गया तकवा का, अल्लाह इसके गुनाह मिटा देगा और इसे बहुत भारी अजर देगा। तुम अपनी ताकत के मुताबिक जहाँ तुम रहते हो वहाँ इन तलाक वाली औरतों को रखो और इन्हें तंग करने के लिए तकलीफ ना पहुंचाओ, और अगर वो हमल से हो तो जब तक बच्चा पैदा हो ले इन्हें खर्च देते रहा करो। फिर अगर तुम्हारे कहने से वही दूध पिलाएं तो तुम इन्हें इनकी उजरत दे दो और बाहम मुनासिब तौर पर मशवरा कर लिया करो, और अगर तुम आपस में कशमकश करो इसके कहने से कोई और दूध पिलाएगी। इतनी डिटेल से तो नमाज का भी तरीका नहीं है कुरान में, जितनी डिटेल से तल्लाक और उसके रेलेवेंट चीज़ों का तस्करा। कुशादगी वाले को अपनी कुशादगी से खर्च करना चाहिए, यानी शौहर का हाथ खुला है तो खुला खर्च दे बीवी को, यानी मुतल्लिका को। और जिस पर इसके रिस्क की तंगी की गई हो, इसे चाहिए कि जो कुछ अल्लाह ने उसे दे रखा है इसी में से अपनी हस्बे हैसियत दे। किसी शख्स को अल्लाह तकलीफ नहीं देता मगर इतनी ही जितनी इसे ताकत दे रखी है। अल्लाह तंगी के बाद आसानी और फरागत भी देगा। बी होपफुल, ये ना कहो कि अब जिंदगी खत्म हो गई, अब तो जिंदगी में कोई खुशी नहीं रह गई। तो एक आयत ईमान से मुतल्लिक, नंबर टू मुश्किलात से निकलने का रास्ता तकवा है। फेथ इन एक्शन, मर्द को इद्दत की हालत में औरत को घर से नहीं निकालना चाहिए और ना ही औरत को इस हालत में घर छोड़ना चाहिए। हम क्या करते हैं, इससे पहले ही छोड़ चुके होते हैं। तलाक दो बाद में जबरदस्ती ली दी जाती है, लड़की तो पहले ही बाप के घर होती है ये इस्लामी माशरा? है हम मुसलमान? अल्लाह हमारे हाल पे रहम कर दे। तलाक का फैसला जज्बाती नहीं, संजीदगी से सोच समझ कर करना है। यहाँ एक जुमला बोल दो, तलाक इज एन एमरजेंसी डोर। आम हालात में एमरजेंसी डोर बंद रहता है, बल्कि जुर्म है उससे गुजरना। आग लग गई, कोई खतरा आ गया, कोई मसला है तो उधर से निकलेंगे। तो हर वक्त तलाक तलाक की धमकियां भी नहीं देनी और एमरजेंसी डोर को बंद भी नहीं करना। कभी गलत फैसला हो जाए तो फौरन वापस ले लीजिए ताकि सारी जिंदगी का रोग ना पालना पड़े। तलाक के मामले में जो अल्लाह की हदूद की पाबंदी करता है, अल्लाह इसकी मुश्किल आसान कर देता है और इसके माल में बरकत देता है। मुस्लिम माशरे को ये सारा पैगाम पढ़ाने की जरूरत है। आगे तीरकु नंबर 2, 8 से 12, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम अजीम। वकाई मिन करियतिन अततना अमरी रब्बिहा, और बहुत सी बस्ती वालों को अपने रब के हुक्म से और इसके रसूलों से सरताबी की, जब उन्होंने हमने भी इनसे सख्त हिसाब किया और इन्हें अजाब दिया, अनदेखा सख्त अजाब। बस उन्होंने अपने करतूत का मजा चख लिया और इंजामे कार इनका खसारा ही हुआ। इनके लिए अल्लाह ताला ने सख्त अजाब तैयार कर रखा है। बस अल्लाह से डरो ए ईमान वालो, यकीनन अल्लाह ताला ने तुम्हारी तरफ नसीहत उतारी है यानी रसूल, जो तुम्हें अल्लाह के साफ साफ अहकाम पढ़कर सुनाता है ताकि इन लोगों को जो ईमान लाए और नेक अमल करें वो तारीकियों से रोशनी की तरफ ले आए। और जो शख्स अल्लाह पर ईमान लाए और नेक अमल करे, अल्लाह उसे ऐसी जन्नतों में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें जारी हैं, जिनमें ये हमेशा हमेशा रहेंगे। बेशक अल्लाह ने इसे बेहतरीन रोजी दे रखी है। अल्लाह वो है जिसने 7 आसमान बनाए और इसी के मिसल जमीनें भी। इसका हुक्म इनके दरमियान उतरता है ताकि तुम जान लो कि अल्लाह हर चीज पर कादिर है और अल्लाह तआला ने हर चीज को इल्म के एतबार से घेर रखा है। दो आयात ईमान से मुतल्लिक, तलाक 10, नसीहत वही कबूल करता है जो अल्लाह से डरता है। 11, रहमतें पाने के लिए नेक काम करने होंगे। फेथ इन एक्शन, अल्लाह के बताए हुए तरीकों पर जिंदगी गुजारनी है। जो ऐसा नहीं करता उसकी जिंदगी दुनिया में भी तंगियों में गुजरती है। कुरान पढ़कर इसके मुताबिक जिंदगी गुजारनी है ताकि दुनिया और आखिरत की कामयाबी हासिल कर सकें। और आखिरी सूरत तहरीम, आपको आज फील हुआ कि पूरे पारे में घर, घर वाले, घर वाली, घर वाला, कितना प्यारा अल्लाह का कलाम। इससे पहले कि कुरान पूरा हो, अल्लाह हमें सिखा रहा है कि घरों को नहीं तोड़ना और कुरान को नहीं छोड़ना इंशाल्लाह। और यहाँ तो अल्लाह के नबी का अपना वाक्य आ रहा है। एक 12 आयात है, 66 नंबर की सूरत है, उम्महातुल मोमिनीन का तस्करा है। खानदान का इदारा तकवा की बुनियाद पर मजबूत होगा। इस सूरत का नजूल 9 हिजरी में हुआ। एक खास वाकया था जिसमें अल्लाह के नबी की अजवाज के बीच में कुछ फ्रिक्शन हो गई और अल्लाह के नबी ने एक अच्छा शौहर होते हुए शहद खाने से कसम खा ली। हलाल को हराम करना चाहा, अल्लाह ने आयतें उतार दी। और नबी हलाल को हराम या हराम को हलाल नहीं कर सकते तो उम्मती कैसे कर सकते हैं? ये है जी ऑल अबाउट सूरत तहरीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 1 से 7, रुकू नंबर 1, हलाल को हराम करना जायज नहीं। या युहन नबी युलिमा तो हर रिमुमा हल्लुल्लाहु लक, ए नबी जिस चीज को अल्लाह ने आपके लिए हलाल कर दिया है इसे आप क्यों हराम करते हैं? क्या आप अपनी बीवियों की रजामंदी हासिल करना चाहते हैं? तो अल्लाह तो बख्शने वाला और रहम वाला है। तहकीक अल्लाह ने तुम्हारे लिए कस्मों को खोल डालना मुकर्रर कर दिया है, और अल्लाह तुम्हारा कारसाज है और वही पूरे इल्म वाला हिकमत वाला है। और याद करो कि जब नबी ने अपनी बाज बीवियों या औरतों से एक पोशीदा बात कही, बस जब इसने इस बात की खबर कर दी और अल्लाह ने नबी को इस पर आगाह कर दिया, तो नबी ने थोड़ी सी बात तो बता दी और थोड़ी सी टाल गए। फिर जब नबी ने अपनी उस बीवी को ये बात बताई तो वो कहने लगी, इसकी खबर आपको किसने दी? ये खवातीन अक्सर पूछती हैं, ये आपको किसने बताया? कहा, सब जानने वाले पूरी खबर रखने वाले अल्लाह ने मुझे ये बताया है, ए नबी की दोनों बीवियों तस्निया ड्यूल, अगर तुम दोनों अल्लाह के सामने तौबा करो तो बहुत बेहतर है, यकीनन तुम्हारे दिल झुक पड़े हैं, और अगर तुम नबी के खिलाफ एक दूसरे की मदद करोगी, बस यकीनन अल्लाह उसका कारसाज है, और जिब्राइल हैं और नेक ईमानदार, और इनके अलावा फरिश्ते भी मदद करने वाले। इससे पता चलता है शोहर नेक और बीवी उसके खिलाफ कोई प्लानिंग करेगी तो अल्लाह आज भी उस शोहर की मदद करेगा। अगर वो पैगंबर तुम्हें तलाक दे दें तो बहुत जल्द इन्हें इनका रब तुम्हारे बदले तुमसे बेहतर बीवियां अनायत फरमाएगा, जो इस्लाम वालियां, ईमान वालियां, अल्लाह के हजूर झुकने वालियां, तौबा करने वालियां, इबादत बजा लाने वालियां, रोजे रखने वालियां होंगी, बेवार कुमारियां। तो कभी अपने मियाँ को धमकी ना दीजिएगा, अल्लाह आपसे अच्छी बीवी दे सकते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा वकूदुहन नास वल हिजारा अलैहा मलाइकतुन गिलाज़ुन शिदाद ला यासून अल्लाह मा अमरहुम व यफ़लून मा युमरून। ये है घर और घर वाले, और उनको जहन्नुम से बचाना है अपने साथ साथ। ऐ मन वालो, तुम अपने आप को और अपने घर वालों को इस आग से बचाओ जिसका ईंधन इंसान है और पत्थर, जिस पर सख्त दिल मजबूत फरिश्ते मुकर्रर हैं, जिन्हें जो हुक्म अल्लाह देता है इसकी नाफरमानी नहीं करते, बल्कि जो हुक्म दिया जाए बजा लाते हैं। ऐ काफिरो, आज तुम उजर और बहाने मत करो, तुम्हें सिर्फ तुम्हारे करतूत का बदला दिया जा रहा है। 3 आयात ईमान से मुतल्लिक, तहरीम 4, आजमाइश वो खैर वाली होती है जो अल्लाह को अपने बंदे के और बंदे को रब के लिए करीब करे, यानी आजमाइश वो खैर होती है जो अल्लाह अपने बंदे के लिए पसंद करे और बंदा उसके बाद अल्लाह के करीब हो जाए। तहरीम 5, नेक सीरत बीवी की खसूसियात। या आयत नंबर नोट कीजिए, जब अपने बेटे के लिए दुल्हन ढूंढने निकले तो ये क्राइटेरियन होना चाहिए लड़की में रिश्ते का, इसमें कोई खानदान बिरादरी और गुज्जर और शेख होना नहीं है। तहरीम 6, घर वालों की इस्लामी तालीम तरबियत और इस्लाह मर्द की जिम्मेदारी है। फेथ इन एक्शन, अल्लाह की जायज करदा चीजों को खुद से ही हराम नहीं करना। मियाँ बीवी को एक दूसरे की बात किसी तीसरे से नहीं करनी चाहिए, किसी की राजदारी की बात दूसरों तक नहीं पहुंचानी, अपने साथ साथ घर वालों की आखिरत की भी फिक्र करनी है, इनकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखना है, घर वालों की बुरी आदत और कोताहियों को नजरअंदाज करने की बजाय इनकी इस्लाह करनी है। और आप देखिए जरा आगे क्या खूबसूरत मौजू पे सूरत आपको लेके आ रही है, रुकू नंबर 2, 8 से 12, अहले ईमान को खालिस तौबा करने का हुक्म। बारिक एंड पे आप देखिए पैगाम क्या है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा। ईमान वालों के नाम, ऐ ईमान वालो, तुम अल्लाह के सामने सच्ची खालिस तौबा करो, करीब है कि तुम्हारा रब तुम्हारे गुनाह दूर कर दे और तुम्हें ऐसी जन्नतों में दाखिल करे जिनके नीचे नहरें जारी हैं। जिस दिन अल्लाह ताला नबी को और ईमानदारों को जो इनके साथ हैं रुसवा न करेगा, अल्लाह हमें भी रुसवाई से बचा ले। इनका नूर इनके सामने और इनके दाई तरफ दौड़ रहा होगा, ये दुआएं करते होंगे, हमारे रब हमें कामिल नूर अता फरमा और हमें बख्श दे, यकीनन तो हर चीज पे कादिर है। शौर के साथ दुआ मांगिए, रब्बना अतमिम लना नूरना वग़फिर लना इन्नका अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह दुनिया में कुरान के नूर से जोड़ दे और आखरत में पुलसरात में रोशनी अता फरमाए। ऐ नबी, कुफार और मुनाफिकों से जिहाद कीजिए और इन पर सख्ती कीजिए, इनका ठिकाना जहन्नुम है और वो बहुत बुरी जगह है। अल्लाह ने कुफार के लिए नूह की और लूत की बीवी की मिसाल बयान फरमाई, ये दोनों हमारे बंदों में दो शाइस्ता और नेक बंदों के घर में थीं। फिर इन्होंने, यानी हजरत नूह और हजरत लूत, फिर इनकी उन्होंने खयानत की, पस वो दोनों नेक बंदे इनसे अल्लाह के किसी अजाब को ना रोक सके और और हुक्म दिया गया है और तो दोजख में जाने वालों के साथ तुम दोनों भी चली जाओ। कितना बेलाग है अल्लाह का कानून। और अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए फिरौन की बीवी की मिसाल बयान फरमाई, जबकि इसने दुआ की कि मेरे रब मेरे लिए अपने पास जन्नत में मकान बना और मुझे फिरौन से और इसके अमल से बचा और मुझे जालिम लोगों से खुलासी दे। आप भी मांगिए, रब इब्नली इंदा कबई तन फिल जन्ना। अल्लाह बस ये दुआ कबूल फरमा ले। अब आखिरी आयतों को सुनिए और मिसाल बयान फरमाई मरियम बिनते इमरान की, जिसने अपनी इज्जत की हिफाजत की, फिर हमने अपनी तरफ से इसमें जान फूंक दी और इस मरियम ने अपने रब की बातों और इसकी किताबों की तस्दीक की और इबादत गुजारों में से थी। अल्लाह शादीशुदा औरतों को हजरत आसिया की और कुंवारी बच्चियों को मरियम की मिसाल दे रहा है। अल्लाह दोनों पे अमल की तौफीक दे दे। दो आयतें ईमान से मतलब, तहरीम 8, तौबा महज जुबान से अल्फाज नहीं दिल से शर्मिंदगी के एहसास का नाम है। सूरह तहरीम आयत 11, जो हिदायत पर रहना चाहे उसे दुनिया की कोई ताकत जेर नहीं कर सकती। शर्त है कि आपको यकीन तो हो। फेथ इन एक्शन, जब कोई गलती हो जाए तो शर्मिंदगी के साथ अल्लाह से खालिस होकर तौबा करनी है। आज खालिस नीयत से नेक अमल करके कल अल्लाह से उसका नूर पाने की उम्मीद रखनी है। आला नसब दुनिया में फायदा दे सकता है, आखरत में कामयाबी के लिए आला अमल करने हैं। अल्लाह आपके मेरे लिए आसान कर दे। तो ये था पारा नंबर 28। आप ईमान की शाखों में वालिदैन के साथ भलाई 55 नंबर की शाख है। अब तो मुझे लगता है आपको इस पे एक लफ्ज भी कहने की जरूरत नहीं है। कुरान पढ़ने के बाद एक तरफ बंदा अल्लाह की कदर करता है और दूसरी तरफ माँ बाप की, क्योंकि अल्लाह ने माशरती जिंदगी में बराबरदारी को बहुत अहम जगह दी है और माशरती तंजीम के लिए नेकी और सिला रहमी का हुक्म दिया, और माँ बाप से ज्यादा कौन इसका हकदार होगा। जिंदगी में वो कितना कुछ आपको देंगे, आप क्यों गिन गिन कर देते हैं। जो मांगते हैं दे दें, जो अच्छा लगता है ले ले, जो पहनते हैं अच्छा लगता है पाँव में पहना हाथ में पहना दे दीजिए, कुछ नहीं होगा। दुआएं ले लीजिए और सूरत अनाम 151 में वबिल वालिदैनि एहसाना को याद रखिए। आइए सब मिलके दुआ मांगते हैं। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। माँ बाप में से भी माँ सलूक की ज्यादा मुस्तहिक है क्योंकि उसने दर्द ज्यादा सहा। मुस्लिम की रिवायत 2548। और इसी से मिलती भी अगली शाख सिला रहमी, यानी हर रिश्ते से नस्बी रिश्तेदारों से वाबस्ता रहना, रिश्ते नहीं तोड़ने, बच्चों को आक नहीं करना। पारे में तो शोहर बीवी के बीच में तलाक की बात हुई, यहाँ बहन भाइयों के मामलात भी हैं। हर रिश्ते के साथ जुड़े रहिए, रिश्तों को जोड़े, बड़ी एनर्जी मिलती है। आप में जो जॉइंट फैमिली सिस्टम में रहते हैं देखिए कितना मजा आता है। 100 बेगाने हो ना किसी जगह, और एक आपको पता चले ना खाला पुप्पो मामू चचा की बेटी आई है तो ढूंढ के जाएंगे उनको मिलने, बेतकल्फी होती है, अच्छा लगता है। और सूरत नाहल की आयत 90, जो हर जुमा खुतबा के एंड पे पढ़ी जाती थी, कभी अब पता नहीं पढ़ते हैं कि नहीं, उसमें भी यह हुक्म है। वईता ज़िल क़ुरबा, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि उस शख्स के रिस्क में कुशादगी और कुशाइश होती है, अगर कोई चाहे कि मेरे रिस्क में ज्यादती हो तो उम्र बड़ी हो तो उसको सिला रहमी करनी है। ये बिलोगुल मराम में हदीस आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। आज की दुआ, अल्लाहुम्मा अस्लिह ली दीनी अल्लज़ी हुवा इस्मतु अम्री वस्लिख ली दुनिया यल्लती फीहा माशी वस्लिख ली आखिरती यल्लती फीहा माआदी वजलिल हयात ज़ियादतली फी कुल्ली खैर वजलिल मौत राहतली मिन कुल्ली शर। हम नाइट सेशंस में भी ये दुआ कर चुके हैं, दुनिया आखिरत की भलाई की दुआ है। और आज के अशआर, आप सब के नाम और मेरे नाम, एज अ वुमेन वजूद जन से है तस्वीर कायनात में रंग, इसी के साज से है जिंदगी का सोजे दुरू, शर्फ में भड़के सुरैया से मुश्ते खाक उसकी, के हर शर्फ है इसी दुर्ज का दुर्रे मकनू, मुकालमाते फलातून न लिख सकी लेकिन इसके शोले से टूटा शरारे अफलातून। ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم